साहित्य कला मंच की देखरेख में आयोजित यह हास्य कवि सम्मेलन अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है।
तो लीजिए आ रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया के रूप में शैल चतुर्वेदी शैल।
हमारे पड़ोसी लाला को बड़ा घमंड था अपने अलीगढ़ी तालों का। हमारे पड़ोसी लाला को बड़ा घमंड था अपने अलीगढ़ी तालों का, मगर जब छापा पड़ा इनकम टैक्स वालों का तो 2 घंटे में बाहर निकल आया दबा हुआ माल कई सालों का। हमारी श्रीमती जी का पारा चढ़ गया और बोली देखा इनकम टैक्स वाले ने हमारे घर की तरफ देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। इनकम टैक्स वाले ने हमारे घर की तरफ देखा भी नहीं आगे बढ़ गया। जब से पड़ोसन क्या छापा पड़ा है उसके आदमी का सीना तन गया है, गिरी भी मुझे तलवार हो गई है, रेडियो पहले की अपेक्षा जोर से बजने लगा है और लाला हम लोगों को भुक्कड़ समझने लगा है। कहता है जिसके यहाँ कुछ होगा ही नहीं उसके यहाँ क्या पड़ेगा। हमारे यहाँ था इसलिए पड़ गया, जिसके यहाँ कुछ नहीं था उसके दरवाजे से आगे बढ़ गया। हमने कहा लाला ठीक है तो कहता है हमारे पास है ही क्या, कविता है, कल्पना है, आंसू है, वेदना है, भावना है, छंद है, चिंता है, अंतर्द्वंद है और ऊपर से महंगाई की मारे हवा बंद है। ऊपर से हमारे पास है ही क्या कविता है, कल्पना है, आंसू है, वेदना है, भावना है, छंद है, चिंता है, अंतर्द्वंद है, ऊपर से महंगाई की मारे हवा बंद है। ITO हमारे यहाँ आता तो भला क्या पाता, वे बोले तुम तो कवि हो, आंसू को मोती और वेदना को हीरा समझते हो, काश इनकम टैक्स वाले हमारे यहाँ आते तो तुम्हारे हीरे और मोती तो पाते। अरे नोटों की गड्डी ने सही, लाख दो लाख आंसू ही ले जाते, नोटों की गड्डी ने सही, लाख दो लाख आंसू ही ले जाते। हमने कहा पगली सरकार को जनता के आंसुओं से क्या लेना देना, सरकार को जनता के आंसुओं से क्या लेना देना, अगर आंसू भी लेन देन का माध्यम हो गया होता तो हमारे पास वो भी नहीं होता। गरीब की आंखों के बजाय तिजोरी में बंद हो गया होता, तिजोरी जिसमें बंद है लहलहाते खेत की मुस्कान, थके हारे होरी का पसीना, मजबूर धनिया का यौवन, सावन का महीना, सशक्ति पायल की झंकार, भूखी और बेबस अधिया का प्यार, अनाथालय का चंदा और अपनी लाश होता हुआ किसी गरीब बच्चे का कंधा। वे बोले चुप हो जाओ, लाला के रेडियो से ऊंचा बज रहे हो। रेडियो बिजली से चलता है उसका क्या बिगड़ता है, तुम तो ब्लड प्रेशर के मरीज हो अभी पसर जाओगे। फिर जहां तुम चीख रहे हो वो कविता का मंच नहीं, तुम्हारे डेढ़ कमरे के शीश महल का परस्तर उखड़ा बरामदा है। ब्याह भी हुआ था कवि से, भगवान जाने किस्मत में क्या बदा है, कम वक्त इनकम टैक्स देने लायक भी नहीं। सुनाऊंगा अभी 4 बजे तक कवि सम्मेलन जिंदा रहेगा, तब तक हमें भी जिंदा रहना है, आपको भी। मैं एक कविता सुना रहा हूँ, देखिए आप ऐसा मौका मिलता नहीं कि इतनी आम जनता में कविता सुनाने का मौका मिले, बहुत से कवि भी यहाँ पर ऐसे मित्र आए हुए हैं जिनके सामने सुनाने का मन होता है। एक कविता सुना रहा हूँ जो मेरी बहुत अच्छी रचनाओं में से मैं समझता हूँ, सुनेगा, कविता शुरू कर रहा हूँ बिना किसी भूमिका के। बाजार का ये हाल है कि ग्राहक पीला और दुकानदार लाल है। दूध वाला कहता है दूध में पानी क्यों है, गाय से पूछो। गाय कहेगी पानी पी रही हूँ तो पानी ही दूंगी, दूध वाला मेरे प्राण ले रहा है मैं तुम्हारे लूंगी। कपड़े वाला कहता है जिस भाव में आया है उस भाव में कैसे दें। मनहर जी आपको 100% आदमी बनाने का आपसे 50% भी नहीं ले, धोबी कहता है राम ने धोबी के कहने पर सीता को छोड़ दिया, आप एक कमीज नहीं छोड़ सकते। ₹100 की कमीज भट्टी खा गई तो आप तिल मिला रहे हैं, इस देश में लोग ईमान को भट्टी में झोंक कर सारे देश को खा रहे हैं, मक्खन वाला कहता है बाबूजी ये मक्खन है खाने के नहीं लगाने के काम में आता है। खाने के नहीं लगाने के काम में आता है। इसका इस्तेमाल त्रेता में विभीषण ने, द्वापर में पांडवों ने और इमरजेंसी में बंसीलाल ने किया था। आज भी सैकड़ों कर रहे हैं और जो नहीं कर पाए वो बहुगुणा होकर भी घास चल रहे हैं। वो बहुगुण वाले होकर भी घास चल रहे हैं। चोर कहता है मुनाफाखोर मुनाफा खा रहे हैं, तो हम भी तिजोरियां तोड़ तोड़ कर अधिकार और कर्तव्य को एक साथ निभा रहे हैं। किसी भी बड़ी तिजोरी में झांक कर देखिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी। किसी न किसी कोने में पड़ी लोकतंत्र की लाश मिल जाएगी, अदालत को हमारा काला चेहरा दिखाई देता है, वकील का काला कोट नहीं दिखता। बाबूजी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में फैसला गवाह लिखता है, कभी भी जज नहीं लिखता। चश्मे वाला कहता है लाल रंग का चश्मा ले जाइए। पॉकेट मार कहता है कि लोग 10-10 साल का इनकम टैक्स मार के भी वफादार हैं। हमने 10-5 रुपए मार दिए तो पॉकेट मार हैं। उन्हें फौज की सलामी, डिफेंस मिनिस्टर, उन्हें फौज की सलामी, हमें खानेदार का जूता, उनको बंगला, हमको जेल। अरे बाबूजी, इसी को कहते हैं चचुंदर के सिर में चमेली का तेल। चश्मे वाला कहता है ये लाल रंग का चश्मा ले जाइए, हिंदुस्तान भी आपको रूस दिखाई देगा। और ये रहा 7 रंगों वाला चश्मा, मेड इन अमेरिका है, इमरजेंसी हटने के बाद बुरी तरह बिका है। और ये रही आखिरी हमारे दुकान की स्पेशल क्वालिटी, हमारे देशी लोकतंत्र का अजीब करिश्मा है, बाबूजी ये कांच का नहीं पत्थर का चश्मा है। एक बार खरीद लो तो 5 साल तक काम में आता है। हमारे देश का हर नेता इसी को लगाता है। बहुत से विद्यार्थी बैठे होंगे यहाँ पर, सुनिएगा। विद्यार्थी कहता है आप हमसे छह सवाल तीन घंटे में करने को कहते हैं। गुरुजी ये वो देश है जहाँ हस्ताक्षर करने में 24 घंटे लगते हैं। ये वो देश है जहाँ हस्ताक्षर करने में 24 घंटे लगते हैं। अंतिम टुकड़ा पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। सैनिक कहता है कौन जानता है कि सैनिक ने अपने खून की आखिरी बूंद के साथ साथ पूरा पूरा न्याय किया है, जिसकी कीमत युद्ध बोने वालों ने विजय के इतिहास में खुद का नाम लिखवाकर और सैनिक की विधवा को सिलाई की मशीन के साथ साथ एक प्रमाण पत्र देकर चुकाई है, ताकि देश के शब्द कहलाने वाले लोग कपड़ा सिलवाने के बहाने शहीद की आत्मा को नंगा कर सके और शहीद का बेटा सीना फुला कर कह सके कि मेरा बाप बहादुरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ गया है, हमारे खाने के लिए कागज का टुकड़ा और पालने के लिए सभ्यता की लाश छोड़ गया है। सिलाई की मशीन और एक कागज का टुकड़ा, शहीद की कीमत, कितना सस्ता हो गया है मेरे देश में सैनिक का खून, कोई चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह मशाल थाम कर बदल क्यों नहीं देता सड़े हुए कानून। मैंने तो केवल बंदूक थाम कर सीमा पर तैनात रहने की कसम खाई है, और सैनिक की कसम सफेद पोश का वादा नहीं है, जिसका पूरा हो जाना उतना ही नामुमकिन है जितना एक वैश्य का प्रतिवता हो जाना सैनिक या तो सैनिक होता है या फिर शहीद। अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरे शहीद होने के बाद मेरी समझदार बीवी कभी कबूल नहीं करेगी सिलाई की मशीन या कागजी भुलावा, और करती रहेगी इंतजार उस वक्त का जब तक मेरा चांद सा बेटा मशाल थाम का सूरज नहीं बन जाता। बाजार का ये हाल है कि ग्राहक पीला और दुकानदार लाल है।
शैल चतुर्वेदी की इस रचना को नमस्कार करता हुआ कवियों की ओर से उन्हें धन्यवाद दे रहा हूँ। जो लोग वास्तव में जाना चाहते हैं, मैं जानता हूँ वास्तव में वो जाएंगे ही। वैसे तो एक आदमी ने बड़ा अच्छा कहा था कि देवी और सज्जनों, फिर बोले सज्जन तो कोई यहाँ दिखता ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले आधी रात के बाद कोई सज्जन घर से बाहर नहीं रहता। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है भाई, अगर ये घर से बाहर है तो घर वालियों के साथ आए हैं, अकेले कोई नहीं आया, और घर वालियों के साथ ही कोई जाना भी चाहे तो कौन रोक पाया है। लेकिन फिर भी काव्य रसिक जन जब तक बैठे रहेंगे, आयोजकों ने ये फैसला कर लिया है कि कवि सम्मेलन अबाध गति से उसी ढंग से चलता रहेगा। मैं शैल जी को नमस्कार करता हुआ एक मुक्तक समर्पित कर रहा हूं उनको कि उदासियां न हटाते तो और क्या करते, न त्योहार मनाते तो और क्या करते, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भी, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। ये केवल कवि की अपनी वेदना है, अंतर्व्यथा है, जिसको वो अपने ढंग से व्यंग के माध्यम से भी बड़ी बात कह देता है। भाई शैल जी को नमस्कार। पूरे देश के कवि सम्मेलनों में अपनी मधुर वाणी और ओजस्वी कविता से अपना रंग जमाती हैं। मैं नूतन कपूर से इन शब्दों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि छोटी शामें लंबी रातें, आओ इनका फर्क मिटा दो। अरे सुनने वाले बहुत है प्यासे, नूतन बनकर रस बरसा दो। आप जोर से नूतन के सम्मान में बात।
पहले दो छंद देश की राजनीति पे ही सुन लीजिए, पसंद आए तो मुझे दाद दीजिएगा ही आप, और नहीं आए तो बाद में मनहर जी को पकड़ लीजिएगा।
बात है।
हमारे देश में ये जो बदलाव आया, दो चुनाव हुए, इसमें हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन चुनाव के परिणाम जब सामने आए तो हमको कुछ नहीं मिला, वही खाली हाथ। तो अब हमको लगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आ जाए, जनता हो जनता है, सो कांग्रेस हो कांग्रेस आई हो, हम सब ऐसे ही रहेंगे। तो इस भाव को मैंने इस छंद में लिया है, आप सुन लीजिए कि जीते चाहे आई, जीते चाहे आई, चाहे जीते एक्स वाई, पर हमको तो नारों की नदी के बीच बहना है। जीते चाहे आई, चाहे जीते एक्स वाई, पर हमको तो नारों की नदी के बीच बहना है। भाषणों का शोर घन घोर चारों ओर, और हमें इस शोर को विभोर होके सहना है। जीते चाहे आई, चाहे जीते एक्स वाई, पर हमको तो नारों की नदी के बीच बहना है। भाषणों का शोर घन घोर चारों ओर, और हमें इस शोर को विभोर होके सहना है। नीतिहीन राजनीति के महान कर्णधारों, आप बीती की प्रतीति है कि अभी सहना है। नीतिहीन राजनीति के महान कर्णधारों, आप बीती की प्रतीति है कि अभी सहना है। वो कैसी ये विवशता है, वायदों के जंगल में टूटी हुई टहनियों को मुस्कुराते रहना है। कैसी ये विवशता है, वायदों के जंगल में टूटी हुई टहनियों को मुस्कुराते रहना है। और दूसरा छंद हमारी पीढ़ी का दर्द, और हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का स्वरूप इन पिछले 34 वर्षों में क्या हो गया। परिभाषाएं आप लोगों ने बहुत पढ़ी, बहुत सुनी, हमारे नेता बहुत बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र का स्वरूप इन 34 वर्षों में क्या से क्या हो गया, वो आप इस छंद में सुन लीजिए। कि गांधी को पढ़ा है, गांधी को पढ़ा है, और जेपी को सुना है खूब, मेरी तो समझ में ना आया लोकतंत्र है। गांधी को पढ़ा है और जेपी को सुना है खूब, मेरी तो समझ में ना आया लोकतंत्र है। वादी प्रतिवादी सब आदि हुए सुविधा के, फाइलों की गोद में समाया लोकतंत्र है। वादी प्रतिवादी सब आदि हुए सुविधा के, फाइलों की गोद में समाया लोकतंत्र है। पाया नहीं संसद सड़क या की झोपड़ी में, चोरों जमाखोरों ने छुपाया लोकतंत्र है। पाया नहीं संसद सड़क या की झोपड़ी में, चोरों जमाखोरों ने छुपाया लोकतंत्र है। वो मांगने पे मिली नहीं रोटी, जब दोनों वक्त भूखी क्रुद्ध पीढ़ियों ने खाया लोकतंत्र है। मांगने पे मिली नहीं रोटी, जब दोनों वक्त भूखी क्रुद्ध पीढ़ियों ने खाया लोकतंत्र है। और बाकी छंदों में मैं थोड़ा सा प्रसंग बदल रही हूँ। कृष्ण ने उद्धव को भेजा था गोपियों के पास ज्ञान का संदेश देने के लिए, और गोपियां चूंकि दूर थी उनसे, इसलिए प्रेम की जो तीव्रता थी वो ज्यादा बढ़ी हुई थी। उद्धव की ज्ञान की कोई भी बात सुनना जब वो गवारा नहीं करती, तो मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं हुई उद्धव के आने पर, उनकी ज्ञान की बातें सुनने के बाद, उन पर ये आप छंद सुन लीजिए। पहला छंद, उद्धव की बात सुनने के बाद वो कृष्ण से एक बात कह रही हैं। उद्धव आए, उनको बिचौलिया नजर आया दोनों के प्रेम में। बिचौलिया प्रेम में आज जितना बुरा लगता उतना उस वक्त भी बुरा लगता था। तो उद्धव के लिए वो एक बात कह रही हैं, सुन लीजिए। कि ये भी कोई कायदा है, वायदा न पूरा करे भेजे एक दूत जो कि दुश्मनों सा लगता। ये भी कोई कायदा है, वायदा न पूरा करे भेजे एक दूत जो कि दुश्मनों सा लगता। ज्ञान की तो बात करे तीन हाथ आगे बढ़, प्रेम का वो नाम सुन पीछे पीछे भगता। ज्ञान की तो बात करे तीन हाथ आगे बढ़, प्रेम का वो नाम सुन पीछे पीछे भगता। ब्रज के निकुंज कुंज गली विथियों के बीच, कान प्रेम कान प्रेम कान प्रेम भगता। ब्रज के निकुंज कुंज गली विथियों के बीच, कान प्रेम कान प्रेम कान प्रेम भगता। वो जान के अनाथ नाथ आपका पर लगता जान के अनाथ नाथ आपका परम मित्र भोली भाली गोपियों को खुलेआम ठगता। और दूसरा छंद, आप इस छंद की भाषा पे गौर करें, जितनी रवानगी इस छंद की भाषा में शायद मेरे किसी छंद में नहीं है। मैंने उन्हें नेह किया उन्होंने स्नेह किया, प्राण से भी प्यारा पहले प्यार का ये प्यारापन। मैंने उन्हें नेह किया उन्होंने स्नेह किया, प्राण से भी प्यारा पहले प्यार का ये प्यारापन। तब मैं विचरती थी अब मैं भटकती हूँ, मुझको कचोटता है मेरा बंजारापन। राधे की व्यथा की कथा कोई नहीं जानता है, सिर्फ वही जानता है मेरा ये बिचारापन। राधे की व्यथा की कथा कोई नहीं जानता है, सिर्फ वही जानता है मेरा ये बिचारापन। ओ छोड़ ब्रज धाम शाम गए जिस शाम, उस शाम से ही बढ़ गया आंसुओं में खारापन। छोड़ ब्रज धाम शाम गए जिस शाम, उस शाम से ही बढ़ गया आंसुओं में खारापन। और तीसरा छंद, निरंतर गोपियों से उस वक्त एक प्रश्न किया गया कि यदि तुम कृष्ण के प्रेम में इतना ज्यादा व्याकुल हो तो स्वयं जाके उनसे क्यों नहीं मिलाती, क्योंकि गोकुल से मथुरा कोई बहुत दूर नहीं था और गोपियां रोज वहां दूध दही बेचने जाती थी, लेकिन कृष्ण से मिलके नहीं आती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था प्रेम में स्वाभिमान। तो इस बात को और उद्धव के ज्ञान की बातों का खंडन गोपियां कर रही हैं, वो सुन लीजिए। वो ज्ञान के पुजारी उद्धव के लिए कह रही हैं, वो ज्ञान के पुजारी तेरी मति गई मारी मूढ़, जानता नहीं है तू महत्व अश्रुपान का। वो ज्ञान के पुजारी तेरी मति गई मारी मूढ़, जानता नहीं है तू महत्व अश्रुपान का। ज्ञान है दुकान प्रेम कांच का मकान, और गोपियों का मान बड़ी आन बान शान का। ज्ञान है दुकान प्रेम कांच का मकान, और गोपियों का मान बड़ी आन बान शान का। गोकुल से मथुरा की दूरी सिर्फ 5 कोस, जानते हैं फिर भी ये प्रश्न स्वाभिमान का। गोकुल से मथुरा की दूरी सिर्फ 5 कोस, जानते हैं फिर भी ये प्रश्न स्वाभिमान का। वो होंगे सम्राट वो विराट ठाट बाट, पर गोपियों का प्रेम भाव पात्र नहीं दान का। होंगे सम्राट वो विराट ठाट बाट, पर गोपियों का प्रेम भाव पात्र नहीं दान का। और अंतिम छंद, इसमें आप गोपियों की खींच देखिए कि उद्धव का बैठना तक जब उनको गवारा नहीं होता तो सखियां आपस में क्या बातचीत करती हैं कि किसकी इजाजत से घुसा ब्रज मंडल में, आओ सखी इसका कमंडल झपट ले। किसकी इजाजत से घुसा ब्रज मंडल में, आओ सखी इसका कमंडल झपट ले। किसने बुलाया और किसने बिठाया इसे ऐसी महामारी से तनिक दूर हट ले। किसने बुलाया और किसने बिठाया इसे ऐसी महामारी से तनिक दूर हट ले। आज ज्ञान भावना में युद्ध घमासान होगा, चलो प्रेम पुस्तिका के पृष्ठों को उलट ले। ज्ञान और भावना में युद्ध घमासान होगा, चलो प्रेम पुस्तिका के पृष्ठ को उलट ले। और श्याम से सुलट लेंगे राम से पलट लेंगे, पहले इस दूत अवधूत से निपट ले। श्याम से सुलट लेंगे राम से पलट लेंगे पहले।
वाह 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 वाह
वाह। कवित्री नूतन कपूर के बाद हास्य व्यंग के सशक्त शिल्पी भाई सुरेंद्र शर्मा आपके सामने आ रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा,
16 लाइन वाली 4 लाइन है। एक अर्थी के पीछे हजारों आदमी जा रिया था, कंधों देने के लिए आपस में होड़ लगा रिया था। मैं सोची शायद कोई बड़ो आदमी मर गयो, जानो चाहिए हरेक से पूछी कुन मर गयो। पर मैंने अचंबो जब आयो, जब है सवाल को जवाब एक भी आदमी को नहीं दे पायो। आखिर मैं एक आदमी के पास पहुंचो, जो अर्थी के आगे आगे गोदी में कुत्तो लिया जा रियो थो। मैं उनसे पूछी भाया कुन मर गयो थो, वह बोलो भरी जवानी मैंने दुखी कर दी थी, यो जो कुत्तो है ना ऐके काटने से मेरी घराली मर गई थी। मैं बोलो भाया भैया तो तू बहुत दुखी है, पर एक काम करा दे, एक दिन के लिए यो कुत्तो मैंने उधार दिला दे। वाह बोलो थे मेरा पे तरस खाओ, ये जो हजारों आदमी है ना कुत्ता के वास्ते ही पीछे पड़ रिया है। एक कविता, हमने पत्नी से कहा,
अच्छा
अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ समझती हो या समझाएं।
वाह।
पत्नी बोली इसके अर्थ तो बिल्कुल ही साफ हैं, इसमें एक जगह मैं हूँ चार जगह आप हैं।
चार लाइन और सुना रही हूँ इसमें, आप देखें कोई आदमी कहीं भी पहुंच जाए लेकिन अपनी औकात नहीं भूल पाता है। दो मास्टर ट्यूशन करके घर आने जा रिया था, रस्ते में बिरला जी की कोठी पड़ी। एक मास्टर दूसरे से बोलो यार जय मैंने बिरला जी की सारी जायदाद मिल जावे, उनकी कोठियां मिल जावे, उनकी फैक्ट्रियां मिल जावे तो मैं बिरला जी से ज्यादा कमा सकूं। दूसरो मास्टर बोलो क्यों बेवकूफ बनावे है तू बिरला जी से ज्यादा कहियां कमावेगो, तो पहलो मास्टर बोलो तीन ट्यूशन भी तो करूंगो। चार लाइन और सुना रही हूं, मैं पत्नी कह रही है ए जी थारे दोस्त की तीसरी पत्नी मर गई, थाने शमशान घाट में जानो चाहिए। मैं बोलो मैं कोनी जाऊं, चाहे वो कितनों भी बुरो मनाओ मैं उनके दो बार हुई आए वह एक बार भी कोनी आयो।
भाई सुरेंद्र शर्मा अपने बहुचर्चित अंदाज में आपसे मुखातिब थे, अब जरा कैसेट का रुख बदलिए और देखिए कि उस तरफ क्या नए गुल खिल रहे हैं। बदलिए है?